તારીખ 20/6/1997 શ્રી સમયસાર ગાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 208 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ હૈ, ઉસકા પ્રગટ અનુભવ કબ હોતા હૈ? નિરાકાર જ્ઞાન કો ગૌણ કરકે સામાન્ય જ્ઞાન કા આવિર્ભાવ કરકે, અમે જ્ઞાનાકાર જ્ઞાન કા આવિર્ભાવ કરકે, જબ જ્ઞાન માત્ર કા અનુભવ કિયા જાતા હૈ, માત્ર જ્ઞાન જિસમે અનુભવ હૈ, સામાન્ય જ્ઞાન મેં અનુભૂતિ હૈ, સ્વસંવેદન હૈ, ઉસકા અનુભવ કિયા જાતા હૈ, તબ જ્ઞાન પ્રગટ અનુભવ મેં આતા હૈ. એસી પરિસ્થિતિ મેં આત્મા પ્રગટ અનુભવ મેં આતા હૈ યા જ્ઞાન પ્રગટ અનુભવ મેં આતા હૈ? परिस्थिति में अनुभव में नहीं आता है, वो बात भी आचार्य देव यहाँ रखते हैं कि तथापि जो ज्ञानी है नियम में आसक्त है, विशेष ज्ञान का आविर्भाव क्यों होता है? क्योंकि नियम की आसक्ति के कारण से. थ्री कॉन्सेप्ट एक पड़ा है कि कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं. पंचेंद्रियों के सभी विषयों में हमने ये दो विभाग कर रखे हैं अपने अभिप्राय में, तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, वही हमारी आसक्ति है, अभिप्राय पूर्वक की आसक्ति है. आसक्ति दो तरह की होती है, अभिप्राय पूर्वक भी होती है और अभिप्राय विरुद्ध भी होती है. जो सन्मार्ग में सन्मार्ग के परिणाम श्रेणी में आता है उनका अभिप्राय बदल जाता है, तो कोई चीज अच्छी नहीं, कोई चीज बुरी नहीं, फिर भी आसक्ति के परिणाम हो जाते हैं, तो अभिप्राय विरुद्ध है. और अभिप्राय समेत होता है वहाँ तो बहुत रस आता है. अभिप्राय विरुद्ध में रस का जो फैक्टर है वो नहीं होता, इतना फर्क पड़ जाता है. इसलिए जो अज्ञानी है नियम में अभिप्राय पूर्वक आसक्त है, आसक्त है माने अभिप्राय पूर्वक आसक्त है, उन्हें वो समाज में नहीं आता. उनको भी ज्ञान का वेदन चल रहा है लेकिन उसका स्वाद माने अनुभवन नहीं होता, वेदन नहीं मालूम पड़ता, नहीं वेदन होने के बावजूद भी मालूम नहीं पड़ता. ऐसी परिस्थिति होती है. लक्ष्य विहीन खुले नेत्र की माफक तरह, जैसे आँख खुली है, दूसरों को लगता है कि इधर देख रहे हैं हम, जो सामने पेड़ है, लेकिन हमारा लक्ष्य कोई और जगह है, तो खुली आँख होने के बावजूद दिखाई नहीं देता. नेत्र खुला है लेकिन लक्ष्यहीन होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता. ऐसे कान तो हमेशा खुला ही रहता है, नेत्र तो बंद उगाड़ होता है, कान में तो बंद उगाड़ का सवाल नहीं है, लेकिन लक्ष्य नहीं है सुनने का तो कुछ नहीं सुनने देगा. और हमेशा कुछ न कुछ आवाज तो आती ही है, फिर भी जहाँ जब लक्ष्य होता है तभी मालूम पड़ता है कि ये सुना. बाकी की आवाज नहीं सुनाई देती। स्वाध्याय में भी ऐसा होता है, एक घंटा हम तो लगातार बोले लेकिन सब बात सुनने में नहीं आते, कुछ बात लक्ष्य बदल जाता है तो सुनने में नहीं आता। तो सुनी अनसुनी होती है, वैसे ही निराकार ज्ञान में जो भी जानने में आया तो जाना अनजाना किया जा सकता है अगर हम लक्ष्य बदले तो। तो वो लक्ष्य कैसे बदले, जो भी अन्य ज्ञेय ज्ञान में जानने में आने के काल में हमको लक्ष्य कैसे बदलना, इसका एक दृष्टांत यहाँ आचार्य श्री देते हैं। यह प्रकट दृष्टांत से बतलाते हैं कि जैसे अनेक प्रकार के शाक आदि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्य को आता है, किंतु अन्य के संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता। क्या दृष्टांत दिया कि दाल में, साक में, नमकीन में नमक डाला जाता है, अब जिस भोजन में नमक डाला है उसमें जिस भोजन में लवण डाला है उसमें उसकी जो मात्र खरापन है वो तिरोभूत हो जाती है और विभिन्न प्रकार का स्वाद आने लगता है। दाल का स्वाद अलग, साग का स्वाद अलग, नमकीन का स्वाद अलग, तो लवण का तो अलग अलग स्वाद होता नहीं, वो तो एक खारापन का स्वाद वाला है, लेकिन भिन्न भिन्न स्वाद का लोलुपता है तो अकेला खारापन है तो पकड़ में नहीं आता, भिन्न भिन्न स्वाद हमको अनुभव में आता है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि सामान्य लवण का तिरोभाव हो गया और विशेष लवण का आविर्भाव हो गया। पर क्यों ऐसा हुआ कि शाक की या भोजन की लोलुपता के कारण है, किंतु परंतु फिर भी अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उसका जो स्वाद है वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो आ सकता है। कैसे आ सकता है कि अगर हम विशेषता को गौण करें तो, वो भी हम करते हैं कैसे कि जब हमारे यहाँ कोई पार्टी बार्टी या कोई भोजन समारंभ 50-100, 200 या 500 आदमी का होता है तो हमको दाल साग पहले चखने का काम करना पड़ता है। हमारा रसोई करने वाला कितना भी होशियार हो, अच्छे से अच्छे आदमी को हम रोकते हैं, पैसे भी पूरे देते हैं, फिर भी हम भरोसा नहीं करते। इसको बोल देते कि आप जब पूरा कर लो अपना काम हमको चखा देना, और वो भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लेता, इसलिए भी हर एक की पसंद अलग अलग होती है। मैं तो मेरी पसंद की क्या चीज़ बनाऊँगा, लेकिन आपकी पसंद में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आपके पसंद के हिसाब से उसमें कोई कमी बेसी कोई चीज़ की करनी हो तो कर सकते हैं। अब वो प्रसंग आता है चखने का, तब सबसे पहले हम नमक का चेकिंग कर लेते हैं। नमक तो दिखता नहीं, क्योंकि वो दिखने की चीज़ नहीं है, स्वाद देने की चीज़ है, इसलिए वो अभी दिखता नहीं है, वो तो उसमें डिसॉल्व हो गया है। डाला तो कितना डाला वो भी हमने देखा नहीं है, जो प्रमाण है उतना डाला होगा या कमी बेसी भी हो सकता है, उसमें भूल भी हो सकती है, पता तो स्वाद से ही लगेगा। तो स्वाद जब हम चखते हैं तब क्या करते हैं कि उसी दाल या सब्जी में मिर्च भी डाला है, खटाई भी डाली है, और भी कई प्रकार के मसाले डाले हैं, सबके स्वाद को हम एसाइड करते हैं। हमारे ज्ञान में क्या करते हैं, ज्ञान की प्रक्रिया को देखो कि सब स्वाद को हम गौण करके एसाइड करके सिर्फ खारापन को हम पकड़ते हैं। तो वो कैसे होता है, ज्ञान की प्रक्रिया को हमें समझना है। तो उस वक्त हम चखने के पहले ही एक उद्देश्य को धारण कर लेते हैं। ज्ञान में क्या करते हैं, हमारे विचार में एक उद्देश्य को धारण करते हैं कि हमको अकेला खारापन का स्वाद को समझना है, दूसरे दूसरे स्वाद को देखना ही नहीं है, आए बिना तो रहेगा नहीं, दूसरे स्वाद भी आए बिना तो रहेगा नहीं। और अकेला खारापन को ऐसे हम नहीं देखते कि दूसरी चीज डालो ही मत, पहले खारा नमक डालो और चखले फिर बाद में दूसरा मसाला डालना, ऐसे नहीं चखते, क्योंकि हमको बीच में आड़ा आता है चखने के टाइम में, ऐसा तो नहीं करते। क्यों कि ये सब मसाले डालने के बावजूद भी खारापन का जो प्रमाण है वो सप्रमाण है या कमी बेसी वाला है, वो देखने की बात है। तो टोटल इग्नोर नहीं करते, अगर टोटल इग्नोर करने का होता तो हम इसे व्यवस्था बिठाते कि उसको डालो ही मत, पहले पहले खारापन को हम देख लेने दो, तो ये तो टेस्टिंग रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे मसाले के स्वाद के सद्भाव में वो खारापन का प्रमाण ठीक है या नहीं है वही देखने का है। तो कुछ प्रमाण में वो दबेगा खारापन, तो उतना नहीं दबना चाहिए कि उसकी कमी लगे, पर उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसका स्वाद बेस्वाद हो जाए। तो हमारा ज्ञान कितनी सूक्ष्मता से काम करता है देख लो, कि हम ज्ञान में उद्देश्य धारण करके बराबर उसका टेस्ट को फाइनल करते हैं। अगर हमको कमी लगता है तो कुक को बोलना पड़ता है कि थोड़ा नमक डालना है, अब डालो हमारी उपस्थिति में, इतना डालो, कितना डालो उतना डालो, और ज्यादा पड़ गया तो उसका कोई रास्ता निकालना पड़ता है, जो भी तरीका हो। हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा ज्ञान में हम वो काम कैसे करते हैं वैसे दूसरे ज्ञेयों के सद्भाव में ज्ञेय को गौण करके नहीं देख करके ज्ञान को ही देखना, ज्ञान का अनुभव को ही मात्र ज्ञान को देखना, ये हमारे कार्य पद्धति अंदर की कार्य पद्धति स्वानुभव की इस प्रकार की है। वो कौन कर सकता है, कि जो नियम में आसक्त नहीं है वो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे को तो विशेष ज्ञान का आविर्भाव हो ही जाएगा। तो आचार्य कहते हैं आसक्ति जाने के लिए अनासक्त होना पड़ता है, अनासक्त कहो या उदासीनता कहो, तो शुरू से ही उदासीनता का क्रम सेवन करना है हमको। वो बात तो ज्ञान की आज्ञा में पहले है, निरंतर उदासीनता का क्रम का सेवन करो और सत्पुरुष की भक्ति में लीन रहो। दोनों एक ही पर्याय का साइड है, इधर लीन रहेंगे उधर उदास हो जाएंगे, उधर उदास हो जाएंगे तो यहाँ लीनता आएगी। वो बात तो 172 पत्र में बराबर की है, 172 पत्र के ऊपर अच्छा स्वाध्याय चला था, वो भी आएगा अपना अनुभूति प्रकाश में दिख रहे हैं। वहाँ टीम बराबर काम में लग गई है भावनगर में, स्वानुभूति प्रकाश का क्या क्या देना। हाँ अच्छा, वो 172 वो भी 172 है। तो क्या कहते हैं कि परमार्थ से देखा जाए तो, परमार्थ से मैंने वास्तविकता क्या है इसको यहाँ परमार्थ कहते हैं, कि वास्तविकता से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण मैंने खारापन, वही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है। खारापन तो वो कि वो है, तो इसकी वास्तविकता है, लेकिन आविर्भाव तिरोभाव होता है। जब स्वाद की आसक्ति होती है तो अकेला खारापन पकड़ में नहीं आता है, और जो चखता है वो मजा नहीं लेगा, वो न्यूट्रल होकर के देखेगा तब भी उसको मालूम पड़ेगा कि खारापन कितना है, सब प्रमाण है या प्रमाण में फर्क पड़ा है। उसको आसक्ति भाव से चखने का नहीं हो सकता, उसको वहां न्यूट्रल रहना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव में भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान, विशेष रूप ज्ञान, अनेक आकार रूप ज्ञान, भेद रूप ज्ञान, वह अज्ञानी ज्ञेयलुब्ध जीवों को स्वाद में आता है। वह ज्ञेयलुब्ध बोला, आसक्त बोला, तो सबको क्या हो रहा है तो सबको अनेक ज्ञेय जानने में आता है, उसमें मिश्रपणा कर लेता है, एकत्व कर लेता है, उसका अवलंबन ले लेता है, और अभिप्राय में भी नहीं लुप्तता है, या तो अच्छा मानता है या तो बुरा मानता है। खाने को बैठते हैं, कोई भी चीज थाली में आती है, ज्ञान में दो विभाग कर लेता है आदमी, ये ठीक है या तो ठीक है, ये गड़बड़ है। ज्ञान का कार्य सिर्फ जानने का है, इससे आगे बढ़ने का है ही नहीं। फिर भी जानते हुए ही थोड़ा आगे बढ़ जाता है, उसको कहते हैं विभाव, विशेष भाव कर देता, कर लेता है, ये अच्छा है या ये बुरा है, दो में से एक डिवीजन कर लेता है, तो ज्ञान का स्वाद तिरोभूत हो जाता है। वरना ज्ञान का स्वाद सुख रूप है। क्या है? अकेला ज्ञान का स्वाद सुख रूप है और मिश्र रूपता से कारण निर्लुब्धता जो होती है उसमें आकुलता का अनुभव हुए बिना रहता नहीं। तो ये सुख गुण की विपरीत पर्याय दुख अनुभव में आती है। अनुभव तो होता ही है, या तो सुख का या तो दुख का, या तो आकुलता का या तो निराकुलता का, दो का दो में से एक को अनुभव होगा। जैसी हमारी समझ वास्तविक समझ होगी तो सुख अनुभव में रहेगा, समझ में मिश्रपना आ जाएगा दुख का अनुभव होगा, क्योंकि पदार्थ तो दो मिलते नहीं कभी, ज्ञान और ज्ञेय कभी एक होते नहीं, हो ही नहीं सकते। जो भिन्न है वो तो भिन्न ही रहेंगे, भिन्न को भिन्न रूप नहीं देखते हैं तो मिश्रता हो जाती है भाव में, द्रव्य से नहीं हो सकती, भाव में होती है, उसको झूठ कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं, और यही दुख का कारण है। अकेला ज्ञान को अनुभव में लेवे तो ज्ञान करता क्या हो सकता है, दूसरा संबंध से नेह के संबंध से मिश्रपना धारण कर लेता है, ये चीज अच्छी है ये चीज अच्छी, मुझे पता लगा मुझे मीठा लगा, तो मिश्रपना कर दिया तो सुख अनुभव में नहीं आएगा। ज्ञान सुख स्वरूप होने के बावजूद भी तो उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे स्वाद के रूप में अकेला मीठा खारापन नमक का अनुभव में नहीं रहता, एक दृष्टांत श्रीखंड का है, अपने यहाँ गुजरात में श्रीखंड का काफी रिवाज है, दूसरी जगह उतना नहीं है। श्रीखंड में तो दो चीज है, एक तो दही या मस्का पानी निकाल कर दे और एक चीनी या शक्कर, शक्कर और दही दो ही चीज है। श्रीखंड में हम दो चीज का अनुभव नहीं करते हैं, अकेला श्रीखंड का अनुभव करते हैं। मिश्र अनुभव करते हैं, श्रीखंड अच्छा है लेकिन श्रीखंड में तो दो चीज है, शक्कर का मीठापन अलग है, मस्का का मीठापन अलग है, लेकिन हम तो दोनों को एक का एक करके अनुभव कर लेते हैं। तो दो का दो अनुभव करना वो वास्तविक है और दो का एक अनुभव करना वो अवास्तविक है। क्यों? कि चीनी मस्का रूप हुई नहीं, मस्का चीनी रूप हुआ। जैसे कि उसी श्रीखंड में आप पानी डाल दो तो वो पानी मीठा हो जाएगा, श्रीखंड फीका हो जाएगा। अगर चीनी मस्का से मिल गई होती तो उसको अलग नहीं कर सकते, उसका मीठापन को अलग नहीं कर सकते। इस तरह से दो दो एक होता ही नहीं, कभी दो दो ही रहता है हमेशा, दूसरा पानी अलग ही रहता है। कारण है और भिन्न को अभिन्न रूप से अनुभव करना वही दुख का कारण है। सारे संसार के सुख दुख की समस्या का यही सारा है जो दुनिया नहीं जानती। हालांकि दुनिया में बुद्धिमान लोग बहुत है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि बिना के बारदान है, ऐसा नहीं है, लोग बुद्धि वाले तो हैं, कितनी बुद्धि लगाते हैं अपने अपने काम में सब, हाँ इसलिए बुद्धि है, लेकिन दो का एक रूप में अनुभव करते हैं ये हमारी बुद्धि की भूल है, ज्ञान की भूल है, वो जगत में किसी को ख्याल में नहीं है, तो उन लोगों को सुख दुख का समाधान नहीं मिलता। हम क्यों दुखी हो रहे हैं इसका समाधान नहीं मिलता। देखो मेरा बेटा मर गया तो मुझे दुख नहीं मिलता, तो तुम भी देखो तो नहीं होगा। क्यों? किसी आत्मा को कोई बेटा हो ही होता ही नहीं। दूसरा आत्मा तो अनुत्पन्न है, वो तो अनादि का है, तुमने कहां से बेटा बना लिया?
जीव की भूमिका है, जीव की भूमिका है तो रूप की बजाने का काम है। किसी को अपना कोई संबंधी मानना का कारण है, और कुटुंब में रहना है और संबंध मानना नहीं, वो अब बड़ी विटंबना की बात है। रहना साथ में
है,
एक मकान के अंदर रहना है सबको साथ में, और संबंध नहीं मानना बड़ी तकलीफ हो जाती है, और मानने से भी तकलीफ तो इससे बड़ी होगी। सबसे बड़ी तकलीफ तो मानने से होगी। दुखी क्या होता है, तो देखो मैं बड़ा हूँ, मेरा इंसल्ट हो गया, तो बड़ा मानने से हुआ ना, तो मैं बड़ा हूँ ही नहीं, सब तरीके हैं, देखो सब अनादि के हैं, तो मैं छोटे मोटे कौन हो गया बताओ? अनादि से वर्तमान तक सबकी आयु एक सरीखी है, ये छोटा मोटा तो देह की बात है। छोटा मोटा तो देह की आयु की बात है, आत्मा कोई छोटा मोटा तो होता नहीं। सब अनादि से वर्तमान तक जीते आ रहे हैं और जी रहे हैं, तो वर्तमान में सबकी आयु से एक सी है, कोई छोटे मोटे नहीं। पारमार्थिक वास्तविक बात तो वो है, लेकिन कल्पना करेंगे संबंध की तो दुख होने वाला है ही। उस दुख का निवारण जो गलती की है वो गलती मिटाना वही है, दूसरे तरीके से वो दुख मिटेगा नहीं। ऐसे आप बोले भाई अपमान से दुख हुआ तो मान देने से तो सुख होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा, ये भी आकुलता का ही कारण है। क्यों? अपेक्षा वृत्ति होगी, मुझे मान मिलना चाहिए। अपेक्षा वृत्ति स्वयं आकुलता का कारण बनेगी, आकुलता दुख है। तो वास्तविकता देखा जाए तो कुटुंब कुटुंब नहीं रहेगा, और ये कड़वापन जैसे कैसे भी गले उतारना है। ये बात थोड़ी कड़वी है, अच्छी नहीं है। कृपालु देव ने सुभाष भाई को क्या लिखा है कि आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो, ऐसी गांधी शिक्षा में आपको लिख रहा हूं। पागलपन की शिक्षा है ये, तो लोगों की नजर में ये पागलपन है। तो हमारे परिवार को हम स्नेह नहीं करें तो किससे स्नेह करें? अगर हम परिवार वाले को स्नेह नहीं करें तो किससे करेंगे? तो उनको ये स्नेह नहीं करना, वो तो पागलपन ही दिखेगा। लेकिन बात तो ऐसी है। देखो सुभाष भाई को कृपाल देव के प्रति स्नेह नहीं था क्या? कह सकते हो क्या? तो उनको दुख देता था, वही दुखदायक था। तो दुख से छुड़ाने के लिए शिक्षा देते हैं, तो दुख से छुड़ाने के लिए जो भी काम करें वो अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए? तो हमको दुख के छुड़ाने के लिए शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा तो अच्छी लगनी चाहिए या बुरी लगनी चाहिए? जिसको संसार प्रिय है उसको तो बुरी लगेगी, जिसको संसार से भटकना बंद करना है उसको मीठी लगेगी। बात तो जो है सो है, वचनामृत भीतर आगना परम शांत रसमू। औषध जे भव रोग ना, भव रोग को मिटाने वाले हैं, लेकिन कायर को, कायर मैंने जो योग्य नहीं है, अयोग्य है, उनको वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसी बात उनको अच्छी नहीं लगता। पात्र जीव को बहुत अच्छी लगती है। कड़वी दवाई देते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो दर्द भी होता है, परहेज में रहना पड़ता है तो कंट्रोल में रहना पड़ता है, सब कुछ भोगना पड़ता है। जैसे दीवार में एक स्क्रू फिट किया है, उसको पकड़ सके इतना आधा इंच बार है, पकड़ सके उतना, बाकी का वो लकड़े में फिट किया है। अब कोई पहलवानी करके उसको खींचता है, निकलता नहीं है। इनके जो आंखें हैं उसमें लकड़ा फिट हो गया है, वो लकड़े के परमाणु कितने हैं? बहुत कम है, लेकिन पहलवान के पहलवाने काम में नहीं आई। उतनी परमाणु की ताकत के आगे पहलवान के पहलवाने काम में नहीं आएगी। वो उसको खींचेगा तो हाथ में छाला पड़ जाएगा, स्क्रू नहीं निकलेगा। लेकिन बीमार आदमी, कमजोर आदमी डिसमिस को लेकर के, स्क्रू ड्राइवर को लेकर के खोलेगा तो सेकंडों में वो बाहर आ जाएगा। तो सिस्टम से काम करना और बिना सिस्टम से काम करने में उतना अंतर है कि हाथ में छाला पड़ने पर भी ये निकलने वाला नहीं है और उधर तो बात बात में निकल जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने सिस्टम बनाई है अपने अनुभव से, देखो हमारा अनुभव से हम उस तरह से सक्सेस गए हैं। अब भी वही पद्धति को इस्तेमाल करके देख लो, ऐसा नहीं है कि हम कहो ऐसा मान लो, अब प्रयोग करो। अगर आप सक्सेस जाते हैं तो आगे बढ़ो और आपको विश्वास आ जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि बात तो सही है, ऐसा ही करना चाहिए, बस उतने से तो बात है। अब जब ये विषय चलता है तो एक बात और जो ध्यान में लेने की है वो है कि ऐसा ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और ज्ञान विशेष का तिरोभाव का भीतर में प्रयोग कौन कर सकता है, किसकी योग्यता है जो कर सकता है? जो हमारे महाबुद्धिमान लोग तो बहुत हैं, ये गाथा पढ़ करके समझ जाते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। हमारे विद्वान लोग भी इसके ऊपर व्याख्यान देते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। कुछ एक कर पाते अलग बात है, अपवाद कर रख लेते हैं, लेकिन बहुभाग लोग प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? के क्रम से कहां आने पर यह प्रयोग लागू होता है वो मालूम नहीं। तो प्रवचन देने वाले को भी मालूम नहीं, क्योंकि वो बात इधर लिखी नहीं है। आचार्य सिंह वो बात नहीं लिखी है, देखो अब पढ़ लेना, हम बताते हैं, वो बात इधर नहीं लिखी है कि जिसको अपना त्रिकाली स्वरूप का लक्ष्य है और अवलंबन का पुरुषार्थ है उसी को ये आविर्भाव तिरोभाव का प्रयोग होगा, दूसरे को नहीं हो सकता। और लक्ष्य पहचान वाले को होता है, भाव वासन वाले को, और भाव वासन परिचय के बिना होता नहीं। परिचय अवलोकन के बिना होता नहीं, कुछ दूसरा आगे का समझ लेना। तो ये भाववासन के बाद ये प्रयोग चलता है, उसको अनुभव हो जाता है आत्मा का, जिसको स्वरूप लक्ष्य में आया और उसके मेपने का अवलंबन का वहाँ पुरुषार्थ होता है, उसको ज्ञान विशेष का तिरोभाव का और सामान्य का आविर्भाव का प्रयोग होता है, उसको स्वानुभूति प्रकट होकर के अनंत भाव का नाश हो जाता है। तो काम तो बहुत बड़ा है लेकिन अपने पद्धति से होता है, बिना पद्धति से नहीं। सब जानते हैं, समझते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते, बिना योग्यता प्रयोग हो नहीं सकता। बिना योग्यता उतनी सीढ़ी चढ़ करके योग्यता में जो आते हैं वही प्रयोग कर सकता है, दूसरा जानने वाले सब प्रयोग नहीं कर सकता। तो जानने की स्पष्टता हो गई तो क्या हो गया, कोई फायदा नहीं है। और परमार्थ से विचार किया जाए तो, यानी वास्तविकता का विचार किया जाए तो, जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। ज्ञान तो वो का वो है, जैसे लवण वो का वो है, नमक वो का वो है, वैसे ही बात है ज्ञान की। अलुब्ध ज्ञानियों को तो क्या होता है, ज्ञानियों को क्या होता है, अज्ञानी को तो ऐसा हो जाता है क्योंकि वो तो मिश्रपणा कर लेता है। जो अलुप्त ज्ञानी है यानी भेद ज्ञान कर लेता है, भिन्नपणा का अनुभव करता है, उनको तो जैसे सिंधु की डली, मैंने लवण की डली, अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सिंधु का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप में स्वाद में आती है। जैसे अकेला नमक कोई खाता है तो उनको किसी भी पहलू से खा लो, कितनी डली होवे, आपने गुजराती में गांगड़ो कहिए, कहीं से चखो, सर्वतः क्षार खारापन है, वहां खारा रस भरा है पूरा पूरा, कहीं से भी चखो खारापन ही अनुभव में आएगा। उसी प्रकार आत्मा भी किसको, ज्ञानी को, अलुब्ध ज्ञानियों को आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके, संयोग होने के बावजूद भी उसका छेद करना है। संयोग के काल में संयोग को नहीं देखना, ज्ञान में उसको छेद कर देना, केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्व संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का, मैंने मात्र अज्ञान का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण, जब क्या है आत्मा में तो कहीं से भी देखो ज्ञान ही ज्ञान है, इधर भी ज्ञान होता 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 है, तो सब तरह ज्ञान ही ज्ञान होता है। ये तो ज्ञान का पिंड है, जैसे नमक की डली खारापन का पिंड है, शक्कर का डली है मीठापन का पिंड है, ऐसे ये ज्ञान पिंड है सर्वतः एक विज्ञान घन रस के कारण से। इसका अनुभव करने पर विशेष सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। तो ज्ञानी जब खाते हैं तो भोजन का स्वाद नहीं लेते हैं, वो ज्ञान का स्वाद लेते हैं जिसमें सुख का स्वाद आता है। आनंदामृत नित्य भोजी, शास्त्र में ऐसा शब्द रखा है, आनंद अमृत का नित्य भोजन करने वाला, आनंदामृत नित्य भोजी, निरंतर वो तो अपना ज्ञान रस का आनंद रस का ही भोजन करते हैं, उनको खाने पीने की चीज में रस नहीं, क्योंकि उसका ध्यान वहां है। तो उधर ध्यान नहीं है, उधर ध्यान है उसका, उधर ध्यान नहीं है तो जगह ध्यान रहेगा नहीं, तो ध्यान गया वो अनाशक्त भाव हो गया, ध्यान गया तो आसक्त हो गया। तो जिसने भीतर का सुख स्वरूप आत्मा देखा, जैसा ज्ञान पिंड है वैसा सुख का पिंड है, कितना सुख भरा है कि बेहद सुख भरा है, जिसकी कोई हद नहीं है उतना भरा है, इसका विश्वास हो गया, प्रतीति आ गई कि अरे मेरे उतने क्षेत्र में तो बेहद सुख भरा है, मैं उसको भूल गया तो इधर उधर ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, देने का प्रयास करता हूँ, और वहाँ के है ही नहीं, वो तो सुख से शून्य है, सभी परमाणु सुख से शून्य है, चाहे परमाणु किसी भी पर्याय को धारण करने वाला हो, किसी भी पर्याय को धारण करो, परमाणु में सुख कभी भी नहीं होता है। और फिर मां से सुख का अपेक्षा रख करके प्रयास करना वो तो बेकार की बेकार का परिश्रम है, सुख मिलने वाला नहीं, आकुलता होगी। और भीतर में जो अनंत सुख भरा है उसका आकर्षण होने से, विश्वास आने से, आकर्षण होने से परिणाम लगेगा, सुख हो जाएगा। ऐसे भेद से कुछ विचार है इसका कि जैसे कोई प्रियजन मिलते ही देखने मात्र से आनंद होता है, क्या होता है, प्रियजन को देखने मात्र से आनंद होता है कि नहीं होता है, ऐसे जो आत्मा का मूल परमात्मा तत्व है, मूल स्वरूप है, अखंड त्रिकाली, वो उतना आनंद से भरा हुआ है, बेहद आनंद से भरा हुआ है कि पर्याय उसको देखते ही आनंद विभोर हो जाती है। देखने वाली जो पर्याय है वो आनंद स्वरूप को देखते ही आनंद विभोर हो जाती है, बाकी कुछ होता नहीं, पर्याय पर्याय रहती है, त्रिकाली त्रिकाली रहता है, त्रिकाली पर्याय रूप होता नहीं, पर्याय त्रिकाली रूप होती नहीं, देखने मात्र से आनंद 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 हो जाता है, बस फिर चाहिए क्या, तुम और जगह देखते हो तो अपनी ओर देखो, बात तो उतनी सी है। दिशा का मोड़ लेना है उतनी सी तो बात, क्या कहा कि जैसे सिंधु की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सिंधु का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक क्षारपना के कारण क्षार रूप से स्वाद में आता है, आती है वो डली, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके देखा जाए तो, और पर द्रव्य आत्मा में है भी नहीं, अपने शरीर के परमाणु आत्मा में नहीं आए, ऑपरेशन करके कुछ भाग निकाल दिया जाए तो आत्मा उसमें नहीं होगा, और आत्मा में से कुछ कमी भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक हुए ही नहीं थे। जब आत्मा अकेला ही रहा है तो उसको अकेला देखो, और अकेला रहा है इसका विश्वास नहीं आता है, तो देखो कि जब तुमको पीड़ा होती है तो अकेले को होती है या दूसरे को भी होती है, एक लड़के को बिच्छू काट लिया, बिच्छू काटता है तो जलन होती है, ऐसी पीड़ा होती है, कैसे कि जैसे कोई जलाते हो, आग लगा दी हो, ऐसी रोम रोम में पीड़ा उठती है, तो पॉइजनस है, तो पॉइजन सारे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है खून में। अब वो चिल्लाता है कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अब ये पीड़ा को कौन ले सकता है बताओ? इसकी माँ को बहुत प्यार है अपने बच्चे पे, वो क्या इस पीड़ा को ले सकती है क्या? पीड़ा को देख करके पीड़ित होगी तो इसकी पीड़ित होने से इसकी पीड़ा थोड़ी कम होती है क्या? कि चलो उसमें कुछ पार्ट आ गया, हाँ, या उधर हाथ रख दे, जहां भी पीड़ा हो रही है वहां हाथ रखे तो थोड़ा उसमें से पार्टिसिपेट कर सकती क्या? उस जीव को अकेले को भोगना पड़ता है। जब दुख अकेले को भोगना पड़ता है तो सुख भी अकेले को ही भोगने की बात है। तो तुम अकेले हो वो बात तो तुमको दुख से भी अनुभव सिद्ध होती है, दुख के अनुभव से भी ये सिद्ध होता है कि तुम अकेला ही हो। तुम जन्मा तब भी अकेला था, मरेगा तब भी अकेला है, और इन बीच में जो भी सुख दुख का अनुभव होगा वो अकेले को होगा, और स्वर्ग में जाएगा तो भी अकेला और मोक्ष में जाएगा तो भी अकेला, वो अकेलापन है। तो अकेले आत्मा को अनुभव करो, अकेले ज्ञान का अनुभव करो, सुखी हो जाओगे। संबंध सहित अनुभव करोगे तो दुखी हो जाओगे। ये सुख दुख की समस्या सारी दुनिया में कोई सॉल्व नहीं किया है किसी ने, वो बात बात में, रमत मात्र में, खेल खेल में, जिनागम में उसका समाधान कर दिया है। सारी दुनिया की वो समस्या है, इतना प्रयास करके भी सुखी नहीं हो रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हम पानी की जगह दूध भी पी सकते हैं क्या? पानी की जगह दूध पी सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमको दूध का पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन कहीं चैन पड़ता, शांति अशांति अशांति अशांति, क्यों? कि अकेले होने के बावजूद भी संबंध, दुख किसका है? संबंध भाव में जोड़ा, जो नहीं है लेकिन झूठा जोड़ दिया, ये झूठ का दुख है और कुछ दुख नहीं। बात तो उतनी सी है। इतनी सी है। वास्तविकता से, परमार्थ से देखा जाओ तो तुम अकेला हो, और तुम अकेला का अकेला होने पर भी अनुभव करना नहीं चाहोगे। दूसरों को साथ में लेकर के तुमको सुख लेना है, तो वो तो कभी होने वाला है। वस्तु स्थिति ये है, पसंद तो आप तुमको करना है, पसंद ये आपकी है, वस्तु स्थिति तो जो है सो है। हमारे पसंद नापसंद से कोई परिस्थिति बदलेगी नहीं, न बदलने वाले भी है, चाहे हमको ठीक लगे चाहे हमको ठीक नहीं लगे। परिस्थिति हमारे ठीक ठीक पड़ने से तो कोई बदलने वाली है ही नहीं। हम आज समझें या कल समझें, या लाख वर्ष के बाद समझे या लाख भव के बाद समझे, समझना पड़ेगा तभी छुटकारा होगा। दुख से छुटकारा तो तभी ही होगा, इसके पहले दुख से छूटने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो भावार्थ में बहुत सादी भाषा में बात कहें, सरल भाषा में, आचार्य ने तो बहुत अपने शास्त्रीय परिभाषा का प्रयोग किया है। यहां आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है, तो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति। अनुभूति है, क्योंकि अनुभव तो ज्ञान में ही होता है, और जगह तो होता नहीं। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही लुप्त हो रहे हैं, और ज्ञेय कौन है, इंद्रियों के विषय है, उसमें वो लुप्त मैंने आसक्त हो रहे हैं। वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। वो क्या करते हैं, तो जो इंद्रिय के विषय उनका आस्वादन लेते हैं, ज्ञान का आस्वादन नहीं लेते। परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन वो नहीं करते हैं। और जो ज्ञानी है वो ज्ञेयों में आसक्त नहीं है, ज्ञेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का ही वो आस्वाद लेते हैं हर हालत में। जैसे शाकों के भिन्न नमक की डली का सार मात्र स्वाद आता है, उसी प्रकार आस्वाद लेते हैं ज्ञान मात्र का। क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है ही नहीं। दिए में से प्रकाश आता है, तो दिया खुद ही प्रकाश का पिंड है, बस बात खत्म। इस प्रकार गुण गुणी का अभेद दृष्टि में आने वाला गुण और गुणी, ज्ञान और आत्मा, गुण गुणी है, आत्मा गुणी है, आत्मा ज्ञान उसका गुण है, उसकी अभेद दृष्टि में आने वाला, भेद दृष्टि नहीं, गुण गुणी का भेद भी नहीं देखना है, सर्वपर द्रव्यों से भिन्न सर्वथा, सर्वपर से सर्वथा भिन्न, और अपने पर्यायों में एक रूप निश्चल, वही परिणमता है, एक रूप रहता है, पर्याय भिन्न भिन्न होती है, वो भिन्न भिन्न होता नहीं है। समुद्र के तरंग अनेक होते हैं, लेकिन समुद्र अनेक हो जाते हैं, अनेक तरंग से समुद्र में कोई भेद नहीं पड़ता, पानी अखंड रहता है, तरंग भिन्न भिन्न है, पानी सभी तरंग में पानी अखंड है कि नहीं, ऐसे सभी पर्यायों में आत्मा अखंड है, पर्याय तो तरंग है आत्मा के, उसमें एक रूप निश्चल, अपने गुणों में भी एक रूप, ज्ञान दर्शन आदि गुण है लेकिन आत्मा उसमें एक है। जैसे शक्कर का स्वाद और सफेदाई, सफेदाई है वो स्वाद नहीं, स्वाद है वो सफेदाई नहीं, शक्कर दोनों में है, शक्कर दोनों में एक है वो साइंटिफिक विजन है ये। पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न, राग द्वेष मोह आदि भावों से भिन्न, अपने स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का अनुभव, वही ज्ञान का अनुभव है, और वह अनुभवन, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप का अनुभव है, वह अनुभव को भावश्रुत कहते हैं, और ये भावश्रुत ज्ञान को ही जिन शासन कहते हैं, कहने में आया है, वो जिन शासन का अनुभव है, समस्त जिन शासन का अनुभव, जिन शासनम सर्वम, ऐसे शुद्ध शुद्ध अनुभव को, स्वानुभव को की महिमा प्रशंसा स्तुति किया है आचार्य महाराज ने, कि ऐसा अनुभव जिन शासन का अनुभव है, समस्त जिन शासन का अनुभव है, ये मामूली बात नहीं। सभी प्रकार के भाव कर्म और द्रव्य कर्म में मोह राजा है, बाकी सब इसका लक्ष्य लश्कर है, सभी कर्म इसका लश्कर है, और चतुर्थ गुण स्थान वाला राजा को मारता है, इसलिए इसकी प्रशंसा की गई है। किसको मारता है? राजा को मारता है। ये जिनेश्वर देव का आयोजन है कि तुमको सर्वप्रथम राजा को मारने का है। लड़ाई तो लड़ने का है, और लड़ाई में तो सारा सैन्य खड़ा है तुम्हारे सामने, लेकिन तुमको सैन्य से नहीं लड़ना है, राजा से लड़ना है। राजा को मारो फिर कोई बात आपत्ति विपत्ति की नहीं रहेगी, सैन्य भगने लगेगा। तो ये जो व्यूह रचना है लड़ने की, योजना है, वो जिनेन्द्र परमात्मा की योजना है। लोग क्या करते हैं, हमको क्रोध हो गया कैसे मिटाएं, हमको ऐसा भाव हो गया कैसे मिटाएं, हमको वो भाव आता है कैसे मिटाएं। चारित्र मोह के सैन्य, क्या सैन्य दिखता है, इसके पीछे राजा खड़ा है, उसको देखता नहीं, तो सैन्य से लड़ाई करता है। राजा यूं क्यों हंसता है, चलो साले को लड़ने दो, उसकी जीत होने वाली नहीं है। भगवान की ये योजना है, राजा को मारा, पहले राजा को मारा।
जैसे राजा को मारेंगे सब भाग के खड़े हो जाएंगे,
भगने ही लग जाएंगे,
रह ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे,
सब पीठ दिखाएंगे, कोई मुंह नहीं दिखाएंगे,
भागेंगे वहीं, खड़े नहीं रह पाएंगे।
ये बात होने वाली है, इसलिए वो समस्त जिन शासन बोले, शुद्ध नहीं से इसमें कोई भेद नहीं है। ये शुद्ध नहीं कहो, शुद्धात्मा का अनुभव कहो, भावश्रुत ज्ञान कहो, जिन शासन कहो, इसमें कोई भेद अंतर नहीं, एक ही बात है। इस तरह से ये गाथा यहाँ समाप्त।